न्याय दर्शन के प्रमाण विचार का यह तीसरा टॉपिक अनुमान का चौथा टॉपिक अनुमान के भेद हैं। हम ऊपर देख चुके हैं कि भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान में व्याप्ति और निगमन दोनों ही सम्मिलित हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि अनुमान में कम से कम तीन निश्चित वाक्य अवश्य होते हैं, अतः जितने भी अनुमान हैं सभी निश्चयात्मक वाक्यों से बने हुए हैं और उनकी यथार्थता केवल संभावित या संभावना मूलक नहीं है, प्रत्युत वस्तु मूलक या वास्तविक भी होती है। इसलिए पाश्चात्य तर्कशास्त्र के अनुमान के कुछ प्रकार भेद न्याय के अनुमान में नहीं पाए जाते हैं। न्यायिक अनुमान के तीन प्रकार के मुख्य भेद मानते हैं। हम देख चुके हैं कि एक दृष्टि के अनुमान के दो भेद होते हैं, स्वार्थ तथा परार्थ। यह विभेद अनुमान के प्रयोजन भेद के अनुसार किया गया है। कभी कभी हम अपने ज्ञान के लिए अनुमान करते हैं, इसे स्वार्थानुमान कहते हैं, किंतु कभी कभी किसी बात को दूसरों को समझाने के लिए भी हम अनुमान करते हैं, यह परार्थ अनुमान कहलाता है। स्वार्थानुमान का उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है, कोई मनुष्य पर्वत में धुआं देखता है तब उसे यह स्मरण होता है कि धुआं और आग में व्याप्ति का संबंध है। अंत में वह इस निगमन पर पहुंचता है कि पर्वत में आग है। यह अनुमान अपने लिए होता है, इसीलिए इसे स्वार्थानुमान कहते हैं। किंतु जब कोई मनुष्य स्वयं समझता है कि पर्वत में आग है और इस बात को दूसरे को समझाने की कोशिश करता है तो वह इस प्रकार का अनुमान करता है, पर्वत वहग्निमान है क्योंकि वह धूमवान है तथा जो धूमवान है वह वहग्निमान है जैसे चूल्हा, उसी प्रकार पर्वत धूमवान है अतः वह भी वहग्निमान है। गौतम के प्राचीन न्याय के अनुमान से अनुमान तीन प्रकार के होते हैं, पूर्ववत, शेषवत तथा सामान्य तोदष्ट। यह व्याप्ति के प्रकार के भेद के अनुसार हुआ है। पूर्ववत तथा शेषवत अनुमान कार्य कारण के नियत संबंध के द्वारा होते हैं, किंतु सामान्यतया दृष्ट कार्य कारण के द्वारा नहीं होता न्याय के अनुसार कार्य के अव्यहित नियम पूर्ववर्ती घटना को कारण कहते हैं और कारण के नित्य अव्यहित परवर्ती घटना को कार्य कहते हैं। पूर्ववत अनुमान उसे कहते हैं जिसमें भविष्य कार्य का अनुमान वर्तमान कारण से होता है, जैसे होने वाली वर्षा का अनुमान वर्तमान समय के मेघों को देखकर करना। शेषवत अनुमान उसे कहते हैं जिसमें वर्तमान कार्य से विगत कारण का अनुमान किया जाता है, जैसे नदी की गंदली तथा वेगवती धारा को देखकर विगत दृष्टि का अनुमान करना। इन दोनों अनुमानों में जो व्याप्ति प्रयुक्त हुई है उसमें साधन तथा साध्य के बीच कार्य कारण संबंध वर्तमान है। सामान्य तो दृष्ट में जो व्याप्ति प्रयुक्त होती है उसके साधन पद तथा साध्य पद के बीच ऐसा संबंध नहीं रहता। साधन पद साध्य पद का न तो कारण है और न कार्य ही है, एक से दूसरे का अनुमान इस आधार पर नहीं होता कि उसमें कारण कार्य संबंध है, वरन केवल इस आधार पर होता है कि वे दोनों बराबर एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं। सामान्यतो दृष्ट का उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है, समय समय पर देखने से मालूम पड़ता है कि चंद्रमा आकाश के भिन्न भिन्न स्थानों पर रहता है, इससे उसकी गति को प्रत्यक्ष भी नहीं देखकर हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि चंद्रमा गतिशील है। इस अनुमान का आधार यह है कि अन्यान्य वस्तुओं के स्थान परिवर्तन के साथ साथ उनकी गति का भी प्रत्यक्ष होता है, इसलिए हम यह अनुमान करते हैं कि चंद्रमा के स्थानांतरित होने के कारण उनमें भी गति होगी, यद्यपि चंद्रमा की गति को हम प्रत्यक्ष नहीं देखते। इसी तरह किसी अपरिचित पशु के शिंगों को देखकर हम अनुमान करते हैं कि उस पशु का खुर फटा होगा। इस प्रकार के अनुमान कार्य कारण संबंध के द्वारा नहीं होते, प्रत्युत सामान्य सादृश्य के अनुभवों के द्वारा ही होते हैं। अतः हम देखते हैं कि सामान्यतो दृष्ट अनुमान उपमान से मिलता जुलता है। नव्य न्याय के एक तीसरे प्रकार के भेद के अनुसार अनुमान तीन तरह के होते हैं, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी तथा अन्वय व्यतिरेकी। यह प्रकार भेद बहुत युक्तिपूर्ण है, क्योंकि यह व्याप्ति स्थापन प्रणाली के प्रकार भेद पर अवलंबित है। हम तो देख चुके हैं कि वर्तमान अनुमान के लिए व्याप्ति कितना आवश्यक है। केवल नान्वयी अनुमान उसे कहते हैं जिसके साधन तथा साध्य में नियत साहचर्य देखा जाता है, अर्थात जिसकी व्याप्ति केवल अन्वय के द्वारा स्थापित होती है और जिसमें व्यतिरेक का सर्वथा अभाव होता है। इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा कर सकते हैं। सभी प्रमेय गेय पदार्थ अभिधेय नाम से पुकारने के योग्य हैं। घट प्रमेय है तथा घट अभिधेय है। इस अनुमान के प्रथम वाक्य में उद्देश्य और विधेय के बीच व्याप्ति संबंध है। इसके विधेय के साथ उद्देश्य के किसी अंश के संबंध का व्यतिक्रम नहीं हो सकता है, क्योंकि यह संभव नहीं कि किसी भी गेय पदार्थ का नाम नहीं दिया जा सकता। कम से कम यह गेय है यह तो अवश्य ही कहा जाएगा। यहाँ व्याप्ति सिद्ध करने के लिए कोई व्यतिरेक दृष्टांत, अर्थात जो अभिधेय नहीं है वह अज्ञेय है, ऐसा दृष्टांत नहीं मिल सकता, क्योंकि जैसा पहले कहा गया है ऐसी कोई वस्तु हम नहीं बता सकते, किसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता। इसीलिए इस प्रकार की व्याप्ति का नाम केवल अन्वयी है। केवल व्यतिरेकी अनुमान उसे कहते हैं जिसमें साध्य के अभाव के साथ साथ साधन के अभाव में व्याप्ति के ज्ञान से अनुमान होता है, साधन और साध्य की अन्वय मूलक व्याप्ति से नहीं। इसीलिए इस व्याप्ति की स्थापना व्यतिरेकी प्रणाली के द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि पक्ष के अतिरिक्त साधन का और कोई दृष्टांत नहीं जिसमें उनका साध्य के साथ अन्वेषण या अन्वय देखा जाए। इस अनुमान का उदाहरण यूं दिया जा सकता है, पहला, अन्य भूतों से जो भिन्न नहीं है उसमें गंध नहीं है, दूसरा, पृथ्वी में गंध है, अतः तीसरा, पृथ्वी अन्य भूतों से भिन्न है। इस अनुमान के प्रथम वाक्य में साध्य के अभाव के साथ साधन के अभाव की व्याप्ति दिखलाई जाती है। साधन गंध को पक्ष पृथ्वी के सिवा और कहीं देखना संभव नहीं है, इसीलिए साधन और साध्य के बीच अन्वय मूलक व्याप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ व्यतिरेक मूलक व्याप्ति पर ही अनुमान किया जा सकता है। अन्वय व्यतिरेक अनुमान उसे कहते हैं जिसमें साधन और साध्य का संबंध अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों के द्वारा स्थापित होता है। इस अनुमान में व्याप्ति संबंध इस प्रकार स्थापित होता है, साधन के उपस्थित रहने पर साध्य भी उपस्थित रहता है, साध्य के अनुपस्थित रहने पर साधन भी अनुपस्थित रहता है। इस प्रकार व्याप्ति का ज्ञान अन्वय और व्यतिरेक की सम्मिलित प्रणाली पर निर्भर करता है। निम्नलिखित युग्म अनुमान के द्वारा अन्वय व्यतिरेकी अनुमान का स्पष्टीकरण हो सकता है। पहला, समी धूमवान पदार्थ वहिग्निमान है, पर्वत धूमवान है अतः पर्वत वहिग्निमान है। दूसरा, सभी वहिग्निहीन पदार्थ धूमवान है या धूमहीन है, अर्थात पर्वत धूमवान है अतः पर्वत वहिग्निमान है। अनुमान के अंतर्गत पांचवा टॉपिक है हेतुभास। अनुमान के दोष। हेतुभास का अर्थ है हेतु का आभास होना, अर्थात हेतु नहीं होने पर भी हेतु के जैसा प्रतीत होना। ऐसे दुष्ट हेतु से अनुमान में हेतुभास दोष आ जाता है। हेतुभास 5 प्रकार के होते हैं, स्वविचार, दूसरा विरुद्ध, तीसरा सत प्रतिपक्ष, चौथा असिद्ध और पांचवा बाधित। हम इनका एक एक कर विचार करेंगे। प्रथम हेतुभास का उदाहरण यूं है, सभी द्विपद बुद्धिमान हैं, हंस द्विपद है अतः हंस बुद्धिमान है। पहला स्वव्यभिचार, इस अनुमान का निगमन गलत है क्योंकि हेतु द्विपद और साध्य बुद्धिमान में अभिचारी अव्यभिचारी व्याप्ति नहीं है। कुछ द्विपद बुद्धिमान हैं और कुछ नहीं भी हैं, ऐसे हेतु को स्वव्यभिचारी कहते हैं। स्वव्यभिचार हेतु के द्वारा एक ही निगमन नहीं निकलता, प्रत्युत दो विरोधी निगमन निकल सकते हैं, यथा सभी द्विपद बुद्धिहीन हैं जैसे कबूतर, हंस द्विपद है अतः हंस बुद्धिहीन है। साहचर्य केवल एकांत रूप से साध्य के साथ ही नहीं वरन अन्य वस्तुओं के साथ भी पाया जाता है, अतः इस हेतु को साध्य का अनेकांतिक हेतु भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार के हेतुभास को विरुद्ध कहते हैं। विरुद्ध हेतु उस अनुमान में पाया जाता है जिसमें वह साध्य के अस्तित्व को नहीं प्रत्युत उसके अभाव को ही पक्ष में सिद्ध करता है। न्यायिक इसका उदाहरण इस प्रकार देते हैं, शब्द नित्य है क्योंकि इसकी उत्पत्ति है, हेतु उत्पत्ति शब्द के नियतत्व को नहीं वरन इसके अनित्यत्व को ही सिद्ध करता है, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसका नाश भी होता है। स्वव्यभिचार और विरुद्ध में यह भेद है कि स्वव्यभिचार हेतु के द्वारा निगमन की सिद्धि निश्चित रूप से नहीं होती, किंतु विरुद्ध हेतु के द्वारा निगमन का खंडन हो जाता है। तीसरा सत प्रतिपक्ष, हेतुभास सत प्रतिपक्ष है। यह दोष तब होता है जब एक अनुमान का कोई दूसरा प्रतिपक्षी अनुमान संभव हो, जैसे पहला शब्द नित्य है क्योंकि यह आकाश की भांति अदृश्य है, दूसरा शब्द अनित्य है क्योंकि यह घट की भांति एक कार्य है। द्वितीय अनुमान प्रथम अनुमान के निगमन को खंडित कर देता है। प्रथम अनुमान में हेतु अदृश्य के द्वारा शब्द की नित्यता सिद्ध की गई है, किंतु द्वितीय अनुमान में हेतु कार्य के द्वारा उसकी अनित्यता सिद्ध की गई है। दूसरे अनुमान का हेतु ठीक है, इसलिए इसके द्वारा पहले अनुमान का हेतु खंडित हो जाता है। अतएव पहले अनुमान में सत प्रतिपक्ष का दोष है। विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष में भेद है कि विरुद्ध में जो हेतु है उसके द्वारा ही उसके निगमन का खंडन हो जा सकता है, किंतु सत प्रतिपक्ष में निगमन का खंडन अन्य संभावित अनुमान के हेतु के द्वारा होता है। चौथा हेतुभास असिद्ध या साध्यसम है। साध्यसम हेतु वह है जो स्वयं साध्य की भांति असिद्ध रहता है। जिस तरह साध्य का अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं है, उसी प्रकार हेतु का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं रहता, इसीलिए उसे साध्य सम कहते हैं। और जब यह स्वयं असिद्ध रहता है तो फिर किस प्रकार का यह निगमन की सत्यता को निश्चित कर सकता है। एक उदाहरण लीजिए, आकाश कमल सुगंधित है क्योंकि यह कमल है। इसमें हेतु कमल का अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि आकाश कमल का अस्तित्व ही संदिग्ध है। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ हेतु स्वयं असिद्ध है, अतः तजन्य दोष को भी असिद्ध ही कहते हैं। पांचवा बाधित, पांचवा हेतुभास बाधित है। एक उदाहरण लेकर हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक द्रव्य है। यहाँ शीतल साध्य है और द्रव्य हेतु। यह अनुमान सही नहीं है क्योंकि हम स्पर्श ज्ञान में अग्नि में केवल शीतलता का अभाव ही नहीं पाते बल्कि उष्णता का स्पष्ट अनुमान पाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हेतु द्रव्य के द्वारा जो अनुमान सिद्ध किया जाता है वह प्रत्यक्ष से बाधित हो जाता है। अतः किसी अनुमान का हेतु यदि अन्य किसी प्रमाण से बाधित हो जाए तो वह अनुमान दोषपूर्ण होता है और उस दोष को बाधित कहते हैं। सत प्रतिपक्ष और बाधित में भेद यह है कि सत प्रतिपक्ष दोष तब होता है जब कोई अनुमान किसी दूसरे अनुमान से खंडित हो जाता है, और बाधित दोष तब होता है जब कोई अनुमान प्रत्यक्ष या अन्य किसी अनुमानितर प्रमाण से खंडित होता है। अनुमान के बाद प्रमाण विचार का चौथा टॉपिक है उपमान। न्याय के अनुसार उपमान तीसरा प्रमाण है। उसके द्वारा संज्ञा संगी संबंध का ज्ञान होता है, अर्थात इसके द्वारा किसी नाम और उसके नामी के संबंध का ज्ञान होता है। कोई विश्वास योग्य व्यक्ति आपके सामने किसी ऐसी वस्तु का वर्णन करे जिसे आपने कभी न देखा हो और पीछे उस वस्तु को देखकर आप कहें कि यह वस्तु वही है जिसका वर्णन आपके सामने किया गया था, तो यह ज्ञान उपमान के द्वारा प्राप्त होगा। एक उदाहरण लेकर हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप नहीं जानते हैं कि गवय या नीलगाय क्या है। कोई जंगल का रहने वाला आपसे बतलाता है कि यह गाय के आकार प्रकार की होती है और गाय से बहुत मिलती जुलती है। अब यदि आप किसी जंगल में बतलाए हुए आकार प्रकार का कोई पशु देखते हैं और समझते हैं कि इसी प्रकार का पशु नील गाय है, तो आपका यह ज्ञान उपमान के द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि किसी लड़के ने हनुमान नहीं देखा। उसे कहा जाता है कि यह बंदर के सदृश ही होता है, केवल इससे आकार में बड़ा होता है और उसका मुंह काला होता है। तब यदि वह लड़का हनुमान को देखकर समझ जाए कि इसी जाति के पशु हनुमान है, तो उसे हनुमान का ज्ञान उपमान के द्वारा प्राप्त होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नाम और नामी के संबंध के ज्ञान को ही उपमान कहते हैं। उपमान प्रमाण के लिए यह आवश्यक है कि हमें किसी परिचित वस्तु के साथ ज्ञातव्य वस्तु के सादृश्यों का ज्ञान प्राप्त रहे और आगे चलकर उन सादृश्यों का प्रत्यक्षीकरण हो। जब हम गवय में गौ के सादृश्य को देखते हैं और पहले सुनी हुई बात का स्मरण करते हैं कि गवय गो के सदृश ही है, तभी हम जानते हैं कि इसका नाम गवय है। अन्य कुछ भारतीय दर्शन उपमान प्रमाण को नहीं मानते। चार्वाक कहते हैं कि उपमान प्रमाण नहीं है क्योंकि इससे नाम का यथार्थ ज्ञान नहीं मिल सकता। बौद्ध दार्शनिक उपमान को प्रमाण तो मानते हैं, किंतु उनके अनुसार यह प्रत्यक्ष और शब्द का ही एक परिवर्तित रूप है, अतः इसे स्वतंत्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वैशेषिक तथा सांख्य उपमान का अनुमान ही एक प्रकार मानते हैं, अतः इनके अनुसार यह न तो कोई विशेष प्रकार का ज्ञान ही है और न कोई स्वतंत्र प्रमाण ही है। जैन उपमान को प्रतिभिज्ञा मानते हैं और मीमांसक और वेदांती उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण तो मानते हैं, किंतु ये इसका कुछ भिन्न अर्थ करते हैं। हम इसका वर्णन मीमांसा दर्शन में करेंगे। प्रमाण विचार के अंतर्गत पांचवा टॉपिक है शब्द। शब्द के अंतर्गत पहला टॉपिक है शब्द का अर्थ और उसके भेद। न्याय के अनुसार चौथा प्रमाण शब्द है। शब्दों एवं वाक्यों से जो वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द कहते हैं। सभी शब्द ज्ञान यथार्थ नहीं होता, अतः शब्द को प्रमाण तभी समझा जाता है जब इसके द्वारा यथार्थ ज्ञान मिलता है। आप्त या यथार्थवादी व्यक्तियों के वचन शब्द प्रमाण समझे जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान प्राप्त रहे और वह अन्य व्यक्तियों के उपकार के लिए उस ज्ञान को प्रकट करे, तो उसके वचन सत्य समझे जाते हैं। कोई वचन या वाक्य स्वतः तो वस्तुओं का ज्ञान नहीं करा सकता, किसी वाक्य के शब्दों को सुनने से ही वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो जाता। शब्दों को सुनकर तथा उनके अर्थ को समझ लेने पर ही उनसे कोई ज्ञान प्राप्त होता है। अतः शब्द यथार्थ या प्रामाणिक तब होता है जब वह किसी विश्वास योग्य व्यक्ति का निश्चयार्थ वाक्य होता है। संक्षेपतः विश्वास योग्य व्यक्ति के वचन के अर्थ का ज्ञान शब्द प्रमाण है। शब्द दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ होते हैं। दृष्टार्थ शब्द को उसे कहते हैं जिसमें ऐसी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है जिनका प्रत्यक्ष हो सके, और दृष्टार्थ शब्द उसे कहते हैं जिससे अदृष्ट वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। साधारण मनुष्य तथा महात्माओं के विश्वास योग्य वचन धर्म ग्रंथों की वैसी उक्तियां जो दृष्ट पदार्थों के संबंध की हो, न्यायालयों में साक्षियों के वचन, विश्वास योग्य किसानों की कृषि संबंधी उक्तियां, वर्षा के लिए धर्म ग्रंथों में बताए हुए यज्ञों के विधान इत्यादि दृष्टार्थ शब्द के अंतर्गत हैं। किंतु प्रत्यक्ष के बाहर वस्तुओं के संबंध में जो साधारण मनुष्यों, महात्माओं, धर्म गुरुओं एवं धर्म ग्रंथों के विश्वास योग्य वचन होते हैं, परमाणु आदि विषयों के संबंध में जो वैज्ञानिकों के वचन हैं, पाप और पुण्य के संबंध में जो धर्म गुरुओं के वचन हैं, ईश्वर, जीव की नित्यता आदि के संबंध में जो धर्म ग्रंथों की उक्तियां हैं, ये सभी अदृष्टार्थ शब्दों के अंतर्गत हैं। दूसरे ढंग से भी शब्द के दो भेद किए गए हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक शब्द स्वयं ईश्वर के वचन माने जाते हैं, अतः वैदिक शब्द बिल्कुल निर्दोष एवं अभ्रांत है। किंतु लौकिक शब्द सभी सत्य नहीं होते, ये मनुष्यों के वचन हैं, अतः ये सत्य या मिथ्या भी हो सकते हैं। लौकिक शब्द केवल वे ही सत्य होते हैं जो विश्वास योग्य व्यक्तियों के वचन होते हैं। हम देखते हैं कि शब्द का प्रथम प्रकार भेद ज्ञातव्य विषयों के स्वरूप के अनुसार हुआ है। दूसरा प्रकार भेद शब्द की उत्पत्ति के संबंध में हुआ है, किंतु दोनों ही से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि न्यायिकों के अनुसार शब्द की उत्पत्ति किसी व्यक्ति से होती है, चाहे वह व्यक्ति कोई मनुष्य हो या स्वयं भगवान हो। शब्द का दूसरा टॉपिक है वाक्य विवेचन। विश्वास योग्य व्यक्तियों के कथित या लिखित वाक्यों के अर्थ को समझने से जो वस्तुओं का ज्ञान होता है वह शब्द प्रमाण के द्वारा होता है। अतः यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि वाक्य क्या है और वह समझ में किस तरह आता है। हम जानते हैं कि वाक्य ऐसे पदों का समूह है जो एक विशेष ढंग से क्रमबद्ध रहते हैं। पद भी ऐसे अक्षरों का समूह है जो विशेष ढंग से क्रमबद्ध रहते हैं। पद का अर्थ ही उसकी विशेषता है। पद का किसी विषय के साथ एक निश्चित संबंध रहता है, अतः जब वह सुना जाता या पढ़ा जाता है तो वह उस विषय का ज्ञान उत्पन्न कर देता है। इस तरह हम देखते हैं कि शब्द अर्थ का प्रतीक है। शब्दों में अर्थबोध कराने की जो क्षमता है उसे शब्दों की शक्ति कहते हैं। न्याय के अनुसार यह शक्ति ईश्वर इच्छा पर निर्भर करती है। ईश्वर के कारण ही शब्दों के अर्थ सर्वदा निश्चित रहते हैं, क्योंकि संसार में जितने प्रकार की व्यवस्था या एकरूपता हम पाते हैं सब ईश्वर जनित ही है। वाक्य पदों का वह समूह है जिसमें कोई अर्थ निकले। किसी भी प्रकार का समूह अर्थपूर्ण वाक्य नहीं समझा जा सकता। किसी अर्थपूर्ण वाक्यों के लिए चार बातें आवश्यक हैं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि तथा तात्पर्य। हम इनका एक एक कर विचार करेंगे। किसी वाक्य के पदों को आपस में एक दूसरे की अपेक्षा रहती है, इसे ही आकांक्षा कहते हैं। सामान्यतः किसी एक पद से ही पूरा अर्थबोध नहीं हो सकता। जब तक एक पद का दूसरे पदों के साथ संबंध न स्थापित किया जाए तब तक वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कहता है लाओ, तो तुरंत ही यह प्रश्न उठता है कि क्या। लाओ पद को किसी वस्तु बोधक पद की आकांक्षा अर्थात अपेक्षा रहती है, जैसे घड़ा। घड़ा लाओ कहने से आकांक्षा पूरी हो जाती है और एक सार्थक वाक्य बन जाता है। दूसरा, योग्यता। वाक्य की दूसरी आवश्यकता उसके पदों की योग्यता है। वाक्य के पदों के द्वारा जिन वस्तुओं का बोध होता है उनमें यदि कोई विरोध न हो तो इस विरोध के अभाव को योग्यता कहते हैं। आग से सींचो। इस वाक्य के पदों में योग्यता का अभाव है, क्योंकि आग और सींचना में परस्पर विरोध है। तीसरा, सन्निधि। वाक्य की तीसरी आवश्यकता सन्निधि या आसक्ति है। वाक्य के पदों का एक दूसरे से सामिप्य होना ही सन्निधि है। कोई वाक्य तभी अर्थसूचक हो सकता है जब उसके पदों में समय एवं स्थान की दृष्टि से नैकट्य हो। यदि उनके बीच समय का बहुत अंतर रहे तो उनसे वाक्य नहीं बन सकता। उसी प्रकार यदि उनके बीच स्थान का बहुत अंतर रहे तो वाक्य नहीं बनता। एक गाय लाओ। इन पदों से आकांक्षा और योग्यता के रहने पर भी इनसे वाक्य नहीं बनता। यदि वे एक एक कर 3 दिनों में बोले जाएं या 3 पृष्ठों पर अलग अलग लिखे जाएं। चौथा, तात्पर्य। किसी वाक्य से जिस अर्थ को सूचित करने का अभिप्राय रहता है वही उसका तात्पर्य है। विभिन्न स्थानों में एक ही पद के कई अर्थ हो सकते हैं। किसी विशेष स्थान पर क्या अर्थ होगा यह वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। अतः उसको समझने के लिए हमें वक्ता या लेखक के अभिप्राय का विचार करना होगा। यदि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि सैंधव लाओ, तो वह मुश्किल में पड़ जाता है कि वह नमक लेके आए या थोड़ा ले आए, क्योंकि सैंधव का अर्थ सैंधव नमक और सिंधु देश का घोड़ा दोनों है। किंतु यदि हम वक्ता के अभिप्राय की सहायता लें तो फिर हम समझ जा सकते हैं कि वह क्या चाहता है। अतः वाक्य के अर्थ को ही हम तभी समझ सकते हैं जब उसके तात्पर्य का विचार करें। साधारण मनुष्यों के द्वारा जो पद गृहित होते हैं उनका तात्पर्य तो हम प्रकरण के अनुसार समझ जा सकते हैं, किंतु वैदिक मंत्रों को समझने के लिए हमें उन नियमों की सहायता लेनी होगी जो मीमांसा दर्शन में इसके लिए दिए गए हैं। तीसरा टॉपिक है जगत संबंधी विचार। अब तक तो हम प्रमाणों का विचार कर रहे थे। प्रमाण विचार के बाद तीसरा टॉपिक है न्याय दर्शन का जगत संबंधी विचार। अब तक तो हम प्रमाणों का विचार कर रहे थे। अब तक हम प्रमेयों का अर्थात ज्ञान के विषयों का विचार करेंगे। न्यायिकों के अनुसार आत्मा, शरीर, इंद्रिय एवं उसकी बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग प्रमेय हैं। साथ साथ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव भी प्रमेय के ही अंतर्गत हैं। सभी प्रमेय जड़ जगत में ही नहीं रहते हैं। इसमें तो केवल भूतों से निर्मित द्रव्य और उनके संबंधी विषय ही रहते हैं। आत्मा, ज्ञान और मन भौतिक नहीं है। काल और दिक भी भौतिक नहीं है, किंतु सब भौतिक द्रव्य दिक और काल में ही रहते हैं। आकाश एक अपरिणामी भूत है। यह जड़ जगत भूतों से अर्थात क्षिति, जल, पावक और समीर से बना हुआ है। यह जड़ जगत भूतों से अर्थात क्षिति, जल, पावक और समीर से बना हुआ है। ये चारों भूत क्रमशः अपने अपने परमाणुओं से बने हुए हैं। ये परमाणु नित्य एवं अपरिवर्तनशील होते हैं। आकाश, काल और दिक भी नित्य विभु द्रव्य हैं। ये परमाणु के बने नहीं रहते। इस प्रकार संक्षेप में कह सकते हैं कि जड़ जगत 4 प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है। परमाणुओं के संयोग से बनी हुई सभी वस्तुएं उनके गुण तथा उनके पारस्परिक संबंध जीव के शरीर, इंद्रिय और उनके द्वारा जानने योग्य वस्तुओं के गुण, ये सभी जड़ जगत के ही अंतर्गत हैं। न्याय और वैशेषिक के जगत संबंधी विचारों में पूरा सादृश्य है, किंतु वैशेषिक में जगत का वृहत वर्णन दिया गया है। वैशेषिक सिद्धांतों को न्यायिक स्वीकार करते हैं, अतः वे वैशेषिक दर्शन को समान तंत्र मानते हैं। इसका पूरा विवरण वैशेषिक दर्शन में दिया जाएगा। न्याय दर्शन का पांचवा टॉपिक है जीवात्मा और मोक्ष। जीवात्माओं को यथार्थ ज्ञान और मोक्ष पाने के लिए मार्ग प्रदर्शन करना ही न्याय दर्शन का उद्देश्य है। हमें यहाँ यह जानना आवश्यक है कि जीवात्मा का क्या स्वरूप है और इसके क्या क्या धर्म हैं। भारतीय का क्या स्वरूप? भारतीय दर्शन में आत्मा के संबंध में चार मत हैं। चार्वाक के अनुसार चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, यह जड़वादी मत है। बौद्धों के अनुसार आत्मा विज्ञानों का प्रवाह है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा एक है, नित्य है एवं स्वप्रकाश चैतन्य है। आत्मा न तो ज्ञाता है, न ज्ञेय है और न अहम ही है। विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत के अनुसार आत्मा केवल चैतन्य नहीं है, बल्कि एक ज्ञाता है जिसे अहम कह सकते हैं। कहा जाता है ज्ञाता अहमर्थ एव आत्मा। आत्मा के संबंध में न्याय वैशेषिक का मत वस्तुवादी कहा जा सकता है। इनके अनुसार आत्मा एक ऐसा द्रव्य है जिसमें बुद्धि या ज्ञान, सुख दुख, राग द्वेष, इच्छा कृति या प्रयत्न आदि गुण के रूप में वर्तमान रहते हैं। ये जड़ जगत के गुण नहीं हैं, क्योंकि जड़ द्रव्यों के गुणों की तरह ये बाह्य इंद्रियों से बोधगम्य नहीं हो सकते। अतः हमें यह मानना ही पड़ता है कि ये एक ऐसे द्रव्य के गुण हैं जो जड़ द्रव्यों से भिन्न हैं। भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न आत्मा है, क्योंकि उनके अनुभव एक दूसरे से पृथक हैं। आत्मा की न उत्पत्ति है, न नाश है, अतः यह नित्य है। यह विभु है, क्योंकि यह काल और दिक दोनों ही दृष्टियों से बिल्कुल असीम है। शरीर या इंद्रियों को आत्मा नहीं कहा जा सकता। शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी चेतना या ज्ञान नहीं है। बाह्य इंद्रियों को भी आत्मा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि कल्पना, स्मृति, विचार आदि मानसिक व्यापार बाह्य इंद्रियों के कार्य नहीं है। मन को भी आत्मा नहीं माना जा सकता है। न्याय वैशेषिक के अनुसार मन अणु है और इसीलिए अप्रत्यक्ष है। मन ही यदि आत्मा माना जाए तो सुख दुख आदि मन के ही गुण होंगे, अतः ये भी अणु अप्रत्यक्ष होंगे। लेकिन सुख दुख की प्रत्यक्ष अनुभूति तो हमें अवश्य होती है। आत्मा को हम विज्ञानों की संतान या प्रवाह मात्र भी नहीं मान सकते हैं, जैसा कि बौद्ध मानते हैं, क्योंकि तब हम स्मृति की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। यदि आत्मा केवल विज्ञानों का प्रवाह मात्र हो तो किसी भी मानसिक अवस्था से इस बात का पता नहीं लग सकता है कि उसके पहले क्या था और उसके बाद क्या आएगा। अद्वैत वेदांतियों का यह मत कि आत्मा स्वप्रकाश चैतन्य है न्यायिक नहीं मानते हैं। शुद्ध चैतन्य नाम का ऐसा पदार्थ नहीं है। चैतन्य के लिए कोई आश्रय द्रव्य होना आवश्यक है। आत्मा ही वह द्रव्य है, चैतन्य उसका एक गुण है। आत्मा ज्ञान नहीं है, बल्कि एक ज्ञाता है जो अहंकार का आश्रय तथा भोक्ता भी है। यद्यपि ज्ञान या चैतन्य आत्मा का एक गुण है, फिर भी हम इसे आत्मा का स्वरूप नहीं मानते हैं। आत्मा में चेतना का संचार तभी होता है जब इसका मन के साथ, मन का इंद्रियों के साथ और इंद्रियों का बाह्य वस्तुओं के साथ संपर्क होता है। यदि ऐसा संपर्क नहीं हो तो आत्मा में चैतन्य का उदय नहीं हो सकता। अतः आत्मा जब शरीर मुक्त होता है तब इसमें ज्ञान का अभाव रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि चैतन्य आत्मा का एक आगंतुक गुण है। हम कैसे समझ सकते हैं कि शरीर, इंद्रिय और मन से भिन्न कोई आत्मा है? कुछ प्राचीन न्यायिक कहते हैं कि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो सकती। उनके अनुसार आत्मा का ज्ञान या तो आप्त वचनों से होता है या उनके प्रत्यक्ष गुणों यथा इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख एवं बुद्धि से, अनुमान के द्वारा होता है। हम लोगों में तो राग द्वेष वर्तमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु यदि कोई स्थायी आत्मा नहीं है तो इसका अस्तित्व ही संभव नहीं है। किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखने का मतलब है कि वह वस्तु सुखद है, किंतु जब तक हम उसको पा नहीं लेते हैं तब तक उससे कोई सुख नहीं मिल सकता। अतः उस वस्तु को पाने की इच्छा हम इसलिए रखते हैं कि हम समझते हैं कि ऐसी ही वस्तुओं से अतीत काल में सुख मिला था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इच्छा तभी हो सकती है जब कोई स्थायी आत्मा रहे, जिसने अतीत में वस्तुओं से सुख प्राप्त किया हो और जो वर्तमान वस्तुओं को अतीत की वस्तुओं के सदृश समझकर उन्हें पाने की अभिलाषा रखता हो। इसी प्रकार द्वेष और प्रयत्न भी बिना स्थायी आत्मा के संभव नहीं है। कोई व्यक्ति सुख तभी प्राप्त करता है जब वह कोई ऐसी वस्तु पा लेता है जिनके द्वारा वह किसी स्मृत सुख का पुनः अनुभव प्राप्त कर सकता है। उसे दुख तब मिलता है जब वह किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है जिसके कारण अतीत में उसे दुख का अनुभव करना पड़ता हो। इसी प्रकार बुद्धि या ज्ञान के लिए भी एक स्थायी आत्मा का अस्तित्व आवश्यक है। आत्मा सर्वप्रथम किसी विषय या उस विषय के संबंध में असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त कराता है। इच्छा, द्वेष आदि की उत्पत्ति न तो शरीर, न इंद्रिय और न मन के द्वारा ही हो सकती है, किंतु नव्य न्यायिक कहते हैं कि मानस प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा का साक्षात ज्ञान होता है। हाँ, यह ठीक है कि जब कोई इसके अस्तित्व पर संदेह करता है तब उपयुक्त ढंग से इसका सिद्ध करना आवश्यक हो जाता है। कुछ न्यायिकों का यह मत है कि मन के साथ आत्मा का संयोग होने से मैं हूँ इस प्रकार का एक मानस प्रत्यक्ष होता है, इसी से आत्मा को जानना संभव है। किंतु कुछ न्यायिक कहते हैं कि आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता, इसका प्रत्यक्ष बुद्धि, सुख, दुख या प्रयत्न आदि प्रत्यक्ष गुण विशिष्ट रूप में ही हो सकता है। इसीलिए मैं जानता हूँ, मैं सुखी हूँ इत्यादि रूप से ही आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है। हम आत्मा का केवल आत्मा के रूप में प्रत्यक्ष नहीं करते, बल्कि इसे ज्ञाता, भोक्ता या केवल कर्ता के रूप में ही जान सकते हैं। अतः आत्मा का प्रत्यक्ष चैतन्य ज्ञान किसी न किसी गुण के द्वारा ही होता है। हम अपने अपने आत्माओं का तो स्वयं प्रत्यक्ष कर सकते हैं, किंतु दूसरे की आत्माओं को उनके बुद्धि परिचालित कार्यों से अनुमान करके ही जान सकते हैं। बुद्धि चालित कार्यों का कारण यह अचेतन शरीर नहीं हो सकता, उनके लिए चेतन आत्मा की ही आवश्यकता है। आत्मा किस तरह मोक्ष प्राप्त कर सके, यही प्रत्येक भारतीय दर्शन का चरम उद्देश्य है। न्याय दर्शन में भी तत्व ज्ञान का अनुसंधान इसीलिए किया जाता है कि उसके द्वारा जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। मोक्ष का वर्णन विभिन्न दर्शनों में भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। न्यायिकों के अनुसार मोक्ष दुख के पूर्ण निरोध की अवस्था है, वे इसे अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग का तात्पर्य है शरीर और इंद्रियों के बंधनों से आत्मा का विमुक्त होना। जब तक आत्मा शरीर ग्रस्त रहती है तब तक इसके लिए दुखों का पूर्ण विनाश संभव नहीं है। इंद्रिय सहित शरीर के वर्तमान रहने पर हम उसका अनुचित एवं अप्रिय वस्तुओं के साथ संपर्क रोक नहीं सकते और फलस्वरूप दुखों से बच नहीं सकते हैं। अतः मोक्ष तभी मिल सकता है जब हम शरीर और इंद्रियों के बंधनों से मुक्त हो जाएं। किंतु शरीर से मुक्त होने पर आत्मा के दुखों का ही केवल अंत नहीं होता है, प्रत्युत उनके सुखों का भी अंत हो जाता है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की अनुभूति अवशिष्ट नहीं रहती। अतः मोक्ष की अवस्था में आत्मा शरीर से पूर्णतया मुक्त होकर सुख दुख से परे हो जाता है और बिल्कुल अचेतन हो जाता है। मोक्ष की अवस्था में जो दुख का नाश होता है, उसका अर्थ यह नहीं कि उस समय दुख केवल कुछ काल तक स्थगित हो जाता है, जैसा कि प्रगाढ़ निद्रा के समय या किसी रोग से विमुक्त होने के बाद या तो किसी शारीरिक या मानसिक कष्ट से मुक्त होने पर होता है। इस अवस्था में तो दुख का सदा के लिए अंत हो जाता है। यह आत्मा की वह चरम अवस्था है जिसका वर्णन धर्म ग्रंथों में अभयम, अजरम, अमृतपदम आदि नामों से किया गया है। मोक्ष पाने के लिए सबसे पहले धर्म ग्रंथों के आत्म विषयक उपदेशों का श्रवण करना चाहिए, तब मनन के द्वारा आत्म विषयक ज्ञान को सुदृढ़ बनाना चाहिए और तब निधिध्यासन के द्वारा अर्थात योग के बतलाए गए मार्ग के अनुसार आत्मा का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इनसे यह लाभ होता है कि मनुष्य आत्मा को शरीर से भिन्न समझने लगता है, तब उसके इस मिथ्या ज्ञान को ही मैं शरीर और मन हूँ अंत हो जाता है और तब वह वासनाओं और प्रवृत्तियों से परिचालित नहीं होता। इस तरह जब मनुष्य वासनाओं और प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाता है तो उसके वर्तमान कर्मों का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि तब तो वह कोई भी कर्म बिल्कुल निष्काम भाव से करता है। अपने संचित कर्मों का फल भोग लेने पर फिर वह जन्म ग्रहण के चक्कर में नहीं पड़ता और इस तरह पुनर्जन्म का अंत हो जाने पर शरीर के बंधनों का और साथ साथ दुखों का भी अंत हो जाता है। यही मोक्ष का अपवर्ग है। न्याय दर्शन का पांचवा टॉपिक है ईश्वर विचार। इस सूत्र में ईश्वर का संक्षिप्त परंतु स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। महर्षि गौतम ने यह प्रतिपादन किया है कि जीवों के कर्मानुसार ईश्वर जगत की सृष्टि और जीवों के सुख दुख का विधान करते हैं। नव्य न्यायिक भी ईश्वर का पूर्ण विचार करते हैं और इसे मोक्ष के लिए आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर की दया से ही जीवात्मा वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है और तब मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर की अनुकंपा के बिना न तो पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न अपवर्ग की ही प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए यहाँ से यह प्रश्न उठते हैं कि ईश्वर क्या है और इसके अस्तित्व के लिए क्या क्या प्रमाण हैं। ईश्वर विचार के अंतर्गत पहला टॉपिक है ईश्वर क्या है। ईश्वर जगत का आदिसृष्टा, पालक तथा संहारक है। वह शून्य से संसार की सृष्टि नहीं करता है, वरन नित्य परमाणुओं, दिक, काल, आकाश, मन तथा आत्माओं से उसकी सृष्टि करता है। ईश्वर के साथ रहने वाली नित्य सत्ताओं का जगत में रूपांतर होना ही सृष्टि है। यह जगत धर्म प्रधान है। इसमें आत्मा अपने अपने पाप और पुण्य के अनुसार क्रमशः दुख और सुख के भागी होते हैं। इसके जड़ द्रव्य आत्माओं के आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए साधन का काम करते हैं। अतः ईश्वर संसार का आदि निर्माता है, उपादान कारण नहीं। इसे हम विश्वकर्मा कह सकते हैं। यह संसार का पोषक भी है, क्योंकि इसी की इच्छानुसार संसार कायम रहता है। यह संसार का संहारक भी है, क्योंकि जब जब धार्मिक प्रयोजनों के लिए संसार के संहार की आवश्यकता जान पड़ती है, तब तब वह विध्वंसक शक्तियों के द्वारा उसका भी संहार करता है। ईश्वर एक अनंत और नित्य है, दिक् काल मन तथा आत्मा इसे सीमित नहीं कर सकते। इन द्रव्यों का ईश्वर के साथ वही संबंध है जो शरीर का आत्मा के साथ है। यद्यपि ईश्वर को मनुष्य के पाप और पुण्य के अनुसार चलना पड़ता है, फिर भी वह सर्वशक्तिमान है। वह सर्वज्ञ है क्योंकि उसे सभी वस्तुओं और घटनाओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त है। उसका ज्ञान नित्य है। इस नित्य ज्ञान के द्वारा यह सभी विषयों का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ईश्वर नित्य ज्ञान युक्त है, अर्थात वह नित्य ज्ञान का आश्रय है। अतः वह उस ज्ञान के साथ अभिन्न नहीं है, जैसा कि अद्वैत वेदांत मानता है। ईश्वर के 6 गुण हैं, जिसे सर्वैश्वर्य कहते हैं। ये गुण उसमें पूर्ण रूप से वर्तमान हैं। इसके अनुसार ईश्वर में अखंड ऐश्वर्य अर्थात आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य है। ईश्वर संसार का निमित्त कारण है, किंतु जीवात्माओं के कामों का वह प्रयोजक कारण है। कोई भी जीव, यहाँ तक कि कोई भी मनुष्य अपने कार्यों को करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। वह केवल अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, अर्थात वह परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार ही कार्य करता है। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान एवं दयालु पिता अपने पुत्र को उसकी मेधा, योग्यता एवं उपार्जित गुण के अनुसार कार्य करने को प्रेरित करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सभी जीवों को अपने अपने अदृष्ट के अनुसार कर्म करने को तथा उनके अनुसार फल पाने को प्रेरित करता है। मनुष्य अपने कर्मों का कर्ता तो है, लेकिन वह ईश्वर के द्वारा अपने अदृष्ट या अतीत कर्म के अनुसार प्रेरित या प्रयोजित होकर कर्म करता है। अतः ईश्वर को जीव के कर्मों का प्रयोजक कर्ता कहते हैं। इस प्रकार ईश्वर संसार के मनुष्यों एवं मनुष्यतर जीवों का धर्म व्यवस्थापक है, उनका कर्म फलदाता और सुख दुखों का निर्णायक है। ईश्वर के लिए प्रमाण। ईश्वर के स्वरूप का विचार तो हमने ऊपर किया है, किंतु प्रश्न यह है कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए क्या क्या प्रमाण हैं? न्याय वैशेषिक दर्शन में इसके लिए अनेक प्रमाण हैं, जिनके अंदर पाश्चात्य दर्शन के ईश्वर संबंधी प्राय सभी प्रमाण आ जाते हैं। यों तो न्याय दर्शन में ईश्वर के लिए प्राय यह प्रमाण दिए गए हैं, किंतु हम यहाँ मुख्य मुख्य प्रमाणों का ही उल्लेख करेंगे। ईश्वर विचार के अंतर्गत ईश्वर के लिए प्रमाण का पहला टॉपिक है, इस संसार का जो कर्ता है वही ईश्वर है। परमाणुओं से बनी हुई पर्वत, समुद्र जैसी जितनी सावय वस्तुएं हैं, सर्वों के कारण हैं, क्योंकि सभी घट की तरह कार्य हैं। उपयुक्त प्रकार की सभी वस्तुएं कार्य हैं, इसके लिए दो प्रमाण हैं। एक तो वे सावयव हैं, दूसरे वे मध्यम परिमाण के हैं। दिक् काल आकाश आत्मा कार्य नहीं है, क्योंकि ये सावयव नहीं प्रत्युत विभु हैं। क्षिति जल अग्नि और वायु के परमाणुओं तथा मन भी कार्य नहीं है, क्योंकि वे अणु तथा निर्वयव हैं। किंतु इनके अतिरिक्त पर्वत और समुद्र, सूर्य और चंद्र, तारे और नक्षत्र जैसी सावयव वस्तुएं हैं, सभी के कुछ न कुछ कारण अवश्य हैं। क्योंकि एक तो वे सावयव हैं, दूसरे ये न तो विभु हैं और न अणु ही हैं। ये सभी वस्तुएं कई उपादान कारणों के संयोग से ही बनी हुई हैं, अतः इनका कोई न कोई बुद्धिमान कर्ता अवश्य होगा। क्योंकि बिना किसी बुद्धिमान कर्ता के संचालन से इन वस्तुओं के उपादान कारणों में वैसा आकार या रूप नहीं आ सकता जैसा उनमें पाया जाता है। इस बुद्धिमान कर्ता को उपादान कारणों का अर्थात परमाणुओं का साधन के बारे में अपरोक्ष ज्ञान होना आवश्यक है, और उसमें लक्ष्य पूर्ति की इच्छा और साथ साथ प्रयत्न की शक्ति होना भी आवश्यक है। इन्हें संक्षेप में ज्ञान चिकित्सा कृति कहते हैं। ज्ञान चिकित्सा कृति, उसे सर्वज्ञ भी होना चाहिए क्योंकि सर्वज्ञ ही परमाणु जैसी सूक्ष्म सत्ताओं का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व बिल्कुल असंदिग्ध है। न्यायिकों की यह युक्ति पॉल जाने के, हरमन लॉर्डजा, जेम्स मार्टिनो जैसे पाश्चात्य दार्शनिकों के ईश्वर संबंधी कारक मूलक युक्ति कॉजल आर्गुमेंट से बहुत मिलती जुलती है। इनके अनुसार भी इस वस्तु जगत का निर्माण किसी बुद्धिमान कर्ता के द्वारा ही होता है, क्योंकि वही उपादान कारणों को आकार और रूप दे सकता है। जॉने कहते हैं कि भिन्न वस्तुओं के जितने भी प्रकार के संयोग होते हैं उनके लिए बुद्धिमान कर्ता की आवश्यकता है, क्योंकि वही भिन्न वस्तुओं में संयोग ला सकता है। उसी प्रकार लॉर्डजा और मार्टिनो भी साधारण जड़द्रव्यों के कारण कार्य सिद्धांत के द्वारा एक ऐसी चेतना सत्ता की कल्पना करते हैं जो संसार का आदि कारण है। बुद्धिमान कर्ता ही संसार का निमित्त कारण है। यह न्यायिक मत मार्टिनो के मत से बहुत मिलता है। उनका मत है कि सृष्टि की इच्छा ही जगत का कारण है। यहाँ एक बात स्मरण रखना चाहिए कि इन पाश्चात्य ईश्वरवादियों में तथा न्यायिकों में कुछ भेद भी है। पाश्चात्य ईश्वरवादियों के अनुसार ईश्वर जगत के उपादानों का केवल संयोजक नहीं है, बल्कि उन उपादानों का स्थिष्टा भी है, किंतु न्यायिकों के अनुसार वह केवल संयोजक ही है, उपादानों का सृष्टा नहीं। फिर भी न्याय मत पाश्चात्य डिज्म अर्थात केवल निमित्त ईश्वरवाद के बिल्कुल सदृश नहीं है। डिज्म के अनुसार ईश्वर जब संसार की सृष्टि कर जाता है तो उससे वह पृथक हो जाता है, तब वह संसार की घटनाओं से कोई संबंध नहीं रखता। जिस तरह घड़ी साज घड़ी के बिगड़ जाने पर ही उसे फिर ठीक करता है, उसी तरह ईश्वर भी केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही संसार की देखरेख करता है, किंतु न्याय दर्शन के अनुसार सर्वदा ही संसार से संबंध रखता है, क्योंकि यह संसार का केवल सृष्टा ही नहीं है वरन इसका रक्षक और संहारक भी है। वह जीव का भी सदा प्रयोजक है। न्याय दर्शन के ईश्वर विचार के ईश्वर के लिए प्रमाण का दूसरा टॉपिक है ख अदृष्ट का अधिष्ठाता ईश्वर है। ईश्वर सिद्धि के लिए न्यायिकों की दूसरी युक्ति यह है। इस युक्ति के मूल में एक प्रश्न है कि हम लोगों के भाग्यों में जो अंतर है उसका कारण क्या है। कुछ लोग सुखी तो कुछ दुखी, कुछ बुद्धिमान तो कुछ मूर्ख। हमारे ऐहिक जीवन में जो जैसी ऐसी भिन्नताएं हैं उनका क्या कारण है। हम ये नहीं कह सकते कि उनका कारण है ही नहीं, क्योंकि ये भी तो जीवन की घटनाएं हैं और कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। हमारे जीवन में जो सुख या दुख पाए जाते हैं उनमें कारण हमारे इस जीवन के या पूर्व जीवन के कर्म ही हैं। हमारे सुकर्मों से हमें सुख एवं कुकर्मों से दुख की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में जो इस प्रकार की एक व्यवस्था है उसका नियामक कर्म है। कर्म नियम के अनुसार मनुष्य अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य पाता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यह तो कारण कार्य सिद्धांत के बिल्कुल अनुकूल है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कारण किसी कार्य को उत्पन्न करता है और प्रत्येक कार्य किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है। जो कारण कार्य नियम को नहीं मानता और जो इस नियम का प्रयोग आचार संबंधी विषयों में करता है वह तो यह अवश्य स्वीकार करेगा कि हमारे कर्म भी उसी प्रकार कारण हैं जिस प्रकार बाह्य जगत की घटनाएं कारण समझी जाती हैं। जिस प्रकार शारीरिक क्रियाएं शारीरिक कार्य उत्पन्न करती हैं और मानसिक क्रियाएं मानसिक कार्य उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार अच्छे या बुरे कर्मों से अच्छे या बुरे फल अर्थात सुख या दुख की उत्पत्ति अवश्य होती है। अतः हमारे सुख या दुख का कारण हमारा कर्म ही है। यदि संसार की सृष्टि एक ऐसे ईश्वर से हुई है जो सर्वशक्तिमान और परम गुणवान है, तो यह सोचना बिल्कुल युक्तिपूर्ण है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होगा। यह ईश्वर संसार का सृष्टा और धर्म व्यवस्थापक भी है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग अपने कर्मों के लिए ईश्वर के सम्मुख अवश्य उत्तरदायी हैं। साथ साथ इसका मतलब यह भी होता है कि ईश्वर इस बात का विचार करता है कि हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है या नहीं।